समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
रंगीन झंडे में लहराती हैं उनकी दुआओं की आवाजें, जो शहीद हुए थे हमारी हिफाजत में उनका प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आज का दिन महान बलिदान का दिवस है। ये दिन वीरता की उस कहानी को आपके सामने फिर से दोहराने का है, जब हमारे देश के तीन वीर सपूतों ने आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा, त्याग, जज्बा और समर्पण का परिचय दिया। देश उनको हमेशा याद रखता है। और याद रखते हुए आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। नमस्कार श्रोताओं, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा। दोस्तों, परिक्रमा के आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। जानेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें। इसके अलावा खेल जगत की हलचल पर भी रहेगी हमारी नजर और साथ ही उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार दिव्या, हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। दिस इज शगुन चोपड़ा विद दिव्या एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, वी हैव रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड अ लॉट मोर। एंड आई कांट गो मच फर्दर बाय सेइंग यस दिव्या, टुडे इट्स डेडिकेटेड टू ऑनर द ब्रेव सोल्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी। And their sacrifice continues to inspire generations and will continue to do so, symbolizing courage and patriotism. Also, we'll cover more about this in our segment Dateline India. And all of this we have over the next 30 minutes. So make sure, listeners, you stick around with us till the end. We begin with the news headlines first, shall we?
Videsh मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, आने वाले दशकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की कूटनीति का एक प्रमुख उद्देश्य है।
RSS to launch several outreach programs to promote social harmony and national unity on Vijay Dashami this year to mark 100 years of its formation.
राष्ट्र आज शहीद दिवस पर महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता और न्याय के लिए क्रांतिकारियों का निडर प्रयास देश को प्रेरित करता रहेगा।
In basketball, India beat host Bahrain in final qualifier match in Manama to book spot in FIBA Men's Asia Cup 2025. And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, and today we will talk about Martyrs' Day. Well, the nation is paying homage to great revolutionaries of the Indian freedom struggle, Bhagat Singh, Shivaram Rajguru and Sukhdev Thapar, who were executed at the Central Jail in Lahore on this very day in 1931. Freedom fighters were tried for assassinating British police officer J.P. Saunders on 17th of December 1928 in Lahore and then were sentenced to death. Their sacrifice remains etched in the collective memory of the Indian people, forever inspiring the nation to uphold the ideals of freedom and unity.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस पर महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनके निडर प्रयास को याद किया, जो देश के लोगों को प्रेरित करता रहेगा।
आज इतने वर्षों बाद भी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर। शहीद दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी वीर वीरांगनाओं को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से भावांजलि अर्पित करता हूं।
Well, a large number of people, they are visiting the National Martyrs Memorial at Husainiwala in Punjab to pay homage to the great freedom fighters. And this day is also observed, you know, to commemorate their sacrifice. And across the country, it is being celebrated today, Divya. Okay, moving on. Today is World Meteorological Day as well. Now we'll talk about that. And this day commemorates the establishment of World Meteorological Organization, WMO. In the year 1950. This day recognizes the vital contributions of meteorologists and also underscores the importance of global collaboration in weather, in climate, and also in water management. This also highlights WMO's efforts to advance weather forecasting and also to tackle climate challenges which we are faced with worldwide. WMO makes the world more safe and also more secure and prosperous. Well, free and unrestricted exchange of weather-related data, products and services, they are very critical to national security and to climate-sensitive sectors. Let's consider a few examples. Well, agriculture, aviation, shipping, energy, water management and also health. So WMO, this acts as the backbone and central nervous system of global weather forecasting.
बिल्कुल शगुना, आपने सही कहा। WMO का जो स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी और आज WMO के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 75वीं वर्षगांठ भी है और हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये वर्ष 1961 से लगातार मनाया जा रहा है और ये इसलिए भी मनाना इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीते कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। हम राजधानी दिल्ली में हैं और राजधानी दिल्ली में ही इस बार की सर्दी देख लीजिए और जिस तरीके से मौसम में लगातार हम परिवर्तन देख रहे हैं तो वो काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं और सर्दियां बहुत कम रह गई हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी पृथ्वी, पूरे हमारी जो ग्रह है उसके सिस्टम में, उसमें कहीं ना कहीं मौसमी परिवर्तन को बहुत दिखा रहा है।
टेम्परेचर्स आर राइजिंग ग्लोबली, नॉट जस्ट हियर लाइक ग्लोबली, एंड ऑफ कोर्स इन लाइक इन आवर In Delhi as well, winters were not that intense. I mean, they were.
Yes, हम लोगों ने जो देखा है तो बहुत इंटेंस वाली सर्दियां भी देखी हैं, लेकिन अब इंटेंस वाली गर्मी देख रहे हैं हम बेसिकली। तो महासागर की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और हर देश इसके प्रभावों को देख रहा है, महसूस कर रहा है, चाहे वो आग से झुलसा हुआ आपने देखा, कैलिफोर्निया की आपने आग देखी और भी देश के
Emergency has been declared over there.
बिल्कुल, और कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भयंकर तूफान आ रहे हैं जिससे इस पृथ्वी के अलग अलग हिस्से, अलग अलग देश प्रभावित हो रहे हैं। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जो मौसम, जलवायु और जल संसाधनों के संदर्भ में हमारे ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। जनरली हम इसके बारे में बहुत कम बात करते हुए देखते हैं लोगों को, लेकिन वाकई में अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इनके प्रति अवेयर हों और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को निभाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं।
जी,
ये एक संदेश हम यहां से भी देना चाहेंगे इस मंच से कि मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं जिससे कि हम जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सके। तो ये इस बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद भी करता है और साथ ही ये तत्व हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब पर इस दिन चर्चा की जाती है। और इस वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस की थीम है प्रारंभिक चेतावनी अंतर को एक साथ बंद करना, यानी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये थीम जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती है और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाने में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है।
Right, and well, the early warning gap, which is used for everybody for finding out where you know these emergencies can be, we have to declare them. So closing the early warning gap together, this reminds us that in this new climate reality, early warning system, they are not just luxuries. They are necessities in this world. And almost half the world's countries, they still lack access to these particular life-saving systems.
Bilkul.
Right? And it is of course, this is not good. And in this digital age, well, of course, lives and livelihoods are being lost because people have no access to effective early warning system. And it can save lots of lives worldwide, right?
बिल्कुल सही बात बोल रहे हो शगुन. और संयुक्त राष्ट्र ने यही देखते हुए 2027 तक अलर्ट सिस्टम के माध्यम से हर देश की सुरक्षा करने की पहल की है और इसीलिए ये जरूरी है कि दुनिया एक साथ आए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई और निवेश बढ़ाए. हमें प्रत्येक देश के स्तर पर इस तरह की पहल के लिए उच्च स्तरीय राजनीतिक समर्थन, प्रौद्योगिकी समर्थन में वृद्धि, सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के बीच अधिक सहयोग की जरूरत है. कहीं न कहीं विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों को मिलकर के काम करना होगा क्योंकि ये पृथ्वी हम सबकी है मिलकर के. अगर कोई भी आपदा आती है तो फिर वो आपदा गरीब और अमीर का फर्क नहीं देखती है, फिर वो सबके लिए होती है.
एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन, इट्स रियली इम्पोर्टेंट इन वेदर एंड ऑल्सो क्लाइमेट मैनेजमेंट.
बिल्कुल.
एंड वी मस्ट इंटेंसिफाई आर एफर्ट्स टू टैकल दिस क्लाइमेट क्राइसिस एट द सोर्स, राइट? And this can be done by rapid and deep cuts to greenhouse gas emissions, which is the main factor which is making all of this happen and affecting climate a lot. And to prevent it, we can actually get it can actually get unimaginably worse. Abhi to this is nothing, it can even intensify. And this year all countries, they must honor the promise to deliver new national climate action plans that align with limiting global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And in this particular era of climate disaster, every person, as you were also talking about it, we all have that responsibility towards our planet Earth, and it must be protected by an early warning system as a matter of justice. And together, let's not just talk, let us deliver.
Let's deliver, yeah. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. तो सबसे पहले शगुन चलते हैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में. तो मध्य प्रदेश में गुड़ी पड़वा से विक्रमोत्सव के राष्ट्रीय चरण का शुभारंभ हो रहा है और गुड़ी पड़वा विक्रम संवत परिवर्तन का दिन है और इस दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है. विक्रम उत्सव के दौरान क्या क्या हो रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता संजीव शर्मा.
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी से विक्रम उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है. विक्रमोत्सव सम्राट विक्रमादित्य के युग, भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या पर केंद्रित है. इसके अंतर्गत साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही ज्योतिर्विज्ञान, विचार गोष्ठियां, इतिहास और विज्ञान समागम, विक्रम व्यापार मेला, लोक एवं जनजातीय संस्कृति पर आधारित गतिविधियां संचालित हो रही हैं. राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि
विक्रमादित्य के जीवन के वैसे तो बहुत सारे पक्ष हैं. ऐसा कहते हैं भगवान राम के बाद सुशासन के लिए सर्वाधिक रूप से जनता के दिलों पर राज किया ऐसा कोई शासन है तो विक्रमादित्य का शासन था, जहां वो न्यायप्रियता, दानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता, गंभीरता सभी क्षेत्रों में एक मनुष्य का एक सामाजिक रूप से पकड़ जिसकी हुई. ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व के नाते से विक्रमादित्य को भारत में नहीं, भारत के बाहर दुनिया भर में, भारत के सभी राज्यों में बहुत आदर के साथ विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है.
राज्य के बाहर भी सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाटिका के माध्यम से उनके जन हितैषी कार्यों की जानकारी जन जन को देने का प्रयास किया जा रहा है. इसी दिन से जल गंगा अभियान भी पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा जो 3 महीने तक चलेगा. न्यायप्रियता, ज्ञानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता और गंभीरता जैसी विशेषताओं के लिए सम्राट विक्रमादित्य का संपूर्ण भारत के साथ ही विश्व में आदर के साथ स्मरण किया जाता है. सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विदेशी आक्रांताओं को पराजित कर 2082 वर्ष पहले विक्रम संवत का प्रवर्तन किया गया था. उन्होंने सुशासन के सभी सूत्रों को स्थापित करते हुए अपने सुयोग्य 32 मंत्रियों का चयन किया, इसलिए उनके सिंहासन को सिंहासन 32 भी कहा जाता है. सम्राट विक्रमादित्य ने गणराज्य की स्थापना कर लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्रियान्वयन आरंभ किया. मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विक्रमोत्सव का आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न पहलुओं के प्रकटीकरण का एक माध्यम है. परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा.
Now, Divya, let's take our listeners to Odisha. Yeah. Well, the Odisha government has renewed its efforts to secure UNESCO Intangible Cultural Heritage status for the Grand Rath Yatra of Puri. After a gap of 3 years, the Sri Jagannath Temple Administration has resumed the process of nominating the festival for the prestigious recognition. Temple Chief Administrator Arbinda Pari said that the nomination dossier of Rath Yatra is currently being prepared, which will be submitted to UNESCO through the Ministry of Culture very soon. Pari, he held a discussion with senior officials of the ministry in this connection during his visit to Delhi recently. And the SJTA is hopeful that the officials concerned will take action soon in this regard, considering the importance of a grand global pilgrimage like Rath Yatra. We have more on this from our Cuttack correspondent.
The chariot festival called Puri Rath Yatra, a cornerstone of our revered 12th century shrine, embodies the rich cultural heritage of India and deserves global recognition. The prestigious tag will recognize Rath Yatra as a significant cultural tradition that should be preserved and promoted. Rath Yatra is one of the most prominent cultural celebrations in the world, which attracts lakhs of people from different parts of the country and abroad every year. A special feature of the festival allows Lord Jagannath and his siblings, Lord Balabhadra and Devi Subhadra, to leave their temple each year, giving followers of various faiths a chance to see them. The festival keeps its traditional spirit even with modern influences. The amazing skill shown in building the famous chariot is still a key feature. Recognition from UNESCO would help share this living heritage worldwide and strengthen community ties. In 2022, the Odisha government has initially initiated efforts to obtain the UNESCO tag. The Culture Department had formed an advisory committee to oversee the nomination process, and the SJTA had suggested 5 senior servitors to be part of the panel. A total of 14 elements from India are inscribed in UNESCO's list of intangible heritage of humanity. These include music, dance, festival, theatre, rituals and storytelling. In 2021, Durga Puja in Kolkata was included in the list. Chow dance styles of both Moyurbhanj and Purulia, West Bengal, were inscribed in the list in the year 2010. The Sri Jagannath Temple administration is optimistic that the concerned authorities will take prompt action given the cultural and spiritual significance of the Rath Yatra. As a globally revered pilgrimage and a key tradition of our 12th century shrine, the festival truly deserves international recognition. Tapan Maharana for Parikrama from Akashvani Cuttack.
और अब शगुन चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ. आउटर रिंग रोड की तर्ज पर रेलवे ने लखनऊ ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है. 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर के लोकेशन सर्वे को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है.
लखनऊ ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर का उद्देश्य लखनऊ क्षेत्र में रेल यातायात की भीड़ को कम करना और सुचारू रूप से रेल संचालन सुनिश्चित करना है. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM SM शर्मा ने बताया कि यह कॉरिडोर चारबाग, ऐशबाग, लखनऊ जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के दबाव को कम करने में मदद करेगा और इस कॉरिडोर के बनने से हर ट्रेन के लगभग 40 मिनट बचेंगे और लोगों को सहूलियत होगी.
लखनऊ एंटर करने से 20-25 किलोमीटर आगे से ही हम एक ऑर्बिटल बना दें तो जरूरी नहीं, जैसे अभी आप कहीं भी जाना चाहें तो चारबाग के थ्रू निकलना है या जंक्शन के थ्रू निकलना है. अगर जिस टर्मिनल पे आपको जाना है आप वहीं पे गाड़ी ले जाएंगे तो उस टर्मिनल का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, प्लस जो अननेसेसरी डिटेंशन होता है इन रूट वो भी नहीं होगा. सो उसी तथ्य को रखते हुए सामने ये प्लान किया गया था कि हम ऑर्बिटल बना लें. ऑल्सो वी कैन प्लान कि हम कुछ जो कोचिंग मेंटेनेंस है वो भी बाहर ले जाएं यहां से, ताकि मैक्सिमम एरिया जो सिटी सेंटर में है वो पब्लिक के लिए रहे. तो इन दो प्रीमाइसेस पे हमने किया था. थर्ड ये भी था कि लखनऊ में काफी अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, सो इन फ्यूचर भी काफी मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क्स और जो फ्रेट लोडिंग के हमारे गुड शेड्स हैं ये आएंगे, उसमें भी मालगाड़ी क्यों लखनऊ चारबाग और कोचिंग वाले टर्मिनल्स पे आए, वो बाहर से ही निकल जाए तो उसको भी फायदा होगा. तो इससे ओवरऑल ऑपरेशन में एफिशिएंसी आएगी और पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा होगा.
DRM SM शर्मा ने बताया कि लखनऊ के 7 मुख्य मार्गों को ऑर्बिटल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा ताकि जिन ट्रेनों का स्टॉपेज लखनऊ में नहीं है वो शहर के बाहरी बाहर अपने गंतव्य के लिए निकल सके. इससे रेल यात्रियों का काफी समय बचेगा, साथ ही इस कॉरिडोर से औद्योगिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी. लखनऊ ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर के लोकेशन सर्वे पर रेलवे 4,25,00,000 रुपए खर्च करेगा. इस सर्वे का काम 8 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. कॉरिडोर के तहत एक ग्रीन फील्ड मेगा पैसेंजर टर्मिनल भी बनाया जाएगा. लखनऊ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बन जाने से उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं सड़क परिवहन पर निर्भरता भी कम हो जाएगी. परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ.
भारतीय सेना की तरफ से बेंगडुबी सैन्य स्टेशन में नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस के अनुरोध पर यह शिविर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के निर्देशों के तहत आयोजित किया गया है। जनसंपर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आज के डिफेंस न्यूज कैप्सूल में जानिए इस विशेष नेत्र शिविर के बारे में। इस रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं प्रसारण अधिकारी आनंद सौरभ।
भारतीय सेना की तरफ से बेंगडुब्बी सैन्य स्टेशन में एक विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई प्रतिष्ठित नेत्र शल्य चिकित्सक और आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में नेत्र रोग विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय मिश्रा कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे इस नेत्र चिकित्सा शिविर के बारे में।
आपका स्वागत है आकाशवाणी के इस बेहद खास बातचीत में।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बेंडोगी मिलिट्री स्टेशन में आपके अगुवाई में जो विशेष ये कैंप नेत्र के लिए शुरू हुआ है, उसके बारे में कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं।
हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर के मार्गदर्शन में हमने ये अपना तीसरा कैंप किया है और ये एडवांस सर्जिकल कैंप हमने वेटरन्स, उनके परिजन और वीर नारी के परिजन उनको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे अपना तीसरा कैंप ऑर्गेनाइज किया था। आज हमारा कैंप का आखिरी दिवस है जिसमें कि हम सर्जरी कर रहे हैं। यहाँ पे करीब हम लोग ने 350 से ऊपर सर्जरी कर चुके हैं। इससे पहले हमने जो कैंप किए थे, पहला कैंप हमने देहरादून में किया था, उसके बाद हमने जयपुर में किया था और ये हमारा तीसरा कैंप है। और हमारे जो नंबर ऑफ सर्जरीज हैं जो हमने, वो सबसे ज्यादा हमने बागडोगरा में ही किया है। इसकी खास बात ये भी है कि हमारे जो पेशेंट है वो न कि यहाँ के लोकल है, हमारे नेपाल ओरिजिन के भी जो एक्स सर्विसमैन है उनके परिजनों का भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया। उसके अलावा हमने कुछ सिविलियंस भी है जो नेपाल ओरिजिन के हैं, उनका भी हमने ऑपरेशन किया।
किन मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इन कैंपों का आयोजन भारतीय सेना आपकी अगुवाई में कर रही है?
हम लोग को अपने वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन और उनके परिजनों के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए हमें। तो अभी हम इसी बात को ध्यान रखते हुए कि स्वास्थ्य पे हम लोग को फोकस करना है और इस तरह का कैंप जहाँ पे कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, हम ऐसे जगह पे जाके उसको कर रहे हैं जहाँ पे इसका डायरेक्ट लाभ हमारे एक्स सर्विसमैन को मिले। हमने अपने सारे एडवांस इक्विपमेंट्स, एडवांस लेंसेस सब दिल्ली से लेके यहाँ पे आए। तो ये एज एन आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है कि आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर इज आउटरीचिंग प्लेसेस वेयर द जो फैसिलिटीज है वो इतनी हाई क्वालिटी की अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम वहां से आए हैं। सर का विजन है कि हमेशा हम लोग को अपने एक्स सर्विसमैन को ध्यान में रखते हुए उनका सम्मान, उनकी देखभाल करनी है।
किन जगहों पे आगे के समय में आप ऐसे कैंप करने की योजना बना रहे हैं?
देखिए, हमने तीन कमांड को कवर किया हुआ। सबसे पहले हमने सेंट्रल कमांड देहरादून में किया था, उसके बाद में साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में, अभी ईस्टर्न कमांड में हमने किया है, इसके बाद हमारा जो एरिया रहेगा वो हम सदर्न कमांड में करेंगे और फिर उसके बाद में नॉर्दर्न कमांड में जाएंगे।
अगर उद्देश्यों की बात करें तो मिलिट्री सिविल कॉपरेशन, चूंकि सेलेक्ट सिविलियंस को भी आप इसमें ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस दिशा में किस प्रकार ये मुहिम कारगर साबित हो रही है?
हमारे जो फॉर्मेशन कमांडर, आर्मी कमांडर और कोर कमांडर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको सेलेक्टिव जो पेशेंट जो नेपाल ओरिजिन के हैं उनका भी देखभाल करनी है। तो हमारे पेशेंट जो नेपाल में, जैसे धरान से वहां से काफी पेशेंट आए थे, उनका ओपीडी में भी उपचार हुआ है और जिनको सर्जरी की जरूरत थी उनकी सर्जरी भी हुई है। तो आज करीब हम लोग 20 पेशेंट जो है जो नेपाल ओरिजिन के हैं उनका ऑपरेशन किया। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा जो सिविल मिलिट्री लाइजन का। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही जितने भी हमारे कैंप्स रहे, वहाँ के जो स्टेट के जो गवर्नर हैं, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को एक पत्र लिखते हैं, उस पत्र के बाद ही हमारा सारा आगे का कार्यक्रम शुरू होता है।
आपने इतनी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों से हमें रूबरू कराया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। से हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।
परिक्रमा के लिए रक्षा मंत्रालय से मैं आनंद सौरभ।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारतीय बास्केटबॉल टीम ने फीबा पुरुष एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टीम ने कल रात क्वालिफायर मुकाबले में मेजबान बहरीन को 81-77 से हरा दिया। भारत की ओर से हर्ष डागर, गुरबाज संधू, कंवर संधू, प्रणव प्रिंस और हफीज ने शानदार प्रदर्शन किया। अब भारतीय टीम सऊदी अरब के जेद्दा में 5 से 17 अगस्त तक होने वाले कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में खेलेगी।
Divya, now let's talk about Khelo India Para Games, where shooters and para archers, they showcase exceptional skill and competitiveness, putting up strong fights against their opponents today. At the Dr. Karni Singh shooting range, Sumedha Pathak clinched the gold medal in the 10-meter air pistol women SH1 category. Rubina Francis secured the silver, while Anita Kumari claimed the bronze. Earlier in the 10-meter air rifle prone mixed SH1 category, Sagar Balasaheb Katale won gold. Mona Agarwal secured silver and Deepak Saini took bronze. Now, let's focus on cricket. In IPL T20 cricket, Sunrisers Hyderabad were 203 for 3 wickets in 14 overs against Rajasthan Royals at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. Earlier, Rajasthan Royals won the toss and they opted to bowl first. And in the second match today, Chennai Super Kings will face Mumbai Indians at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai. The match will begin at 7:30 p.m. And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed.
Remembering the sacrifices of the great heroes of the freedom struggle, Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Shivaram Hari Rajguru, who were martyred on the 23rd of March 1931. The young freedom fighters who believed in the ideology of making some noise to wake up the slumbering British rulers were hanged by the colonial rulers.
Death of Lala Lajpat Rai, who was mortally wounded while leading a non-violent protest against the Simon Commission when it visited Lahore on October the 30th, 1928. They decided to strike back at the British. In 1928, the plan to kill British Police Superintendent James Scott, who was responsible for the death of Lala Lajpat Rai. However, another British police officer, J.P. Saunders, was killed due to mistaken identity.
After the incident, the group went underground for a few months. However, in April 1929, Bhagat Singh resurfaced along with another associate, Batukeshwar Dutt, and they threw a bomb inside the Central Legislative Assembly in Delhi to make the deaf British government hear them. The duo allowed themselves to be arrested while shouting the famous slogan, Inqalab Zindabad.
Bhagat Singh's time in the prison was spent protesting, seeking better living conditions for inmates. During this time, he gained the sympathy of the public for the 114 days hunger strike. Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru were convicted. The legendary freedom fighters were in their early 20s only when they were hanged in the Lahore jail after being sentenced to death by the
और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. आज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुहासिनी गांगुली की पुण्यतिथि है. भारतवर्ष की आजादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था जिसको पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया. और उनके इस त्यागमय जीवन और साहसिक कार्य को सम्मान देने के लिए कोलकाता की एक सड़क का नाम सुहासिनी गांगुली सरणी रखा गया है. और सुहासिनी गांगुली का घर क्रांतिकारियों के लिए शरण का सुरक्षित ठिकाना था. उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ देने की वजह से 1930 से 38 तक हिजली डिटेंशन कैंप में गिरफ्तारी जेल में उनको रखा गया. और 1965 में सुहासिनी गांगुली की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और 23 मार्च 1965 को वो स्वर्ग सिधार गई.
Well, today we are also remembering Pyara Singh Gill, nuclear physicist and a pioneer in cosmic ray nuclear physics. His is an epic story of a man who rose from humble roots to the top of his chosen field of scientific research and became an internationally known physicist and a science administrator, all of which took him on a global journey from Punjab to Panama and then to Chicago.
और आज स्वतंत्रता सेनानी बसंती देवी की जयंती है. वे स्वतंत्रता सेनानी और बंगाल के प्रसिद्ध नेता चितरंजन दास की पत्नी थी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन में भी ये सम्मिलित हुई. लोगों में खादी का प्रचार करने के अभियोग में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 1922 में चितरंजन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि गिरफ्तार कर लिए गए. चितरंजन दास को चटगांव राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करनी थी लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर बसंती देवी ने स्वयं इस सम्मेलन की अध्यक्षता की.
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग नलिनी बाला देवी, द पोएटेस ऑफ असम्स हार्ट. वेल, हर फादर करमवीर नबीन वॉज अ रिनाउंड सोशल वर्कर, राइटर एंड फ्रीडम फाइटर ऑल्सो. एंड इंस्पायर्ड बाय हर फादर्स आइडियल, शी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स एंड पोएट्स इन असमीज लिटरेचर एज वेल. एंड शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन द नॉन कॉपरेशन एंड स्वदेशी मूवमेंट्स एज वेल.
और अंत में जाते जाते हम उन सभी जितने भी हमारे शहीद हुए इस देश को आजाद कराने में सबको याद करते हैं। इस गीत के साथ अब हमें मुझे और शगुन को दीजिए इजाजत परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।